بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعيذه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیو، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوموں پر عذاب کی ایک عجیب غریب اور نئی شکل بتایا. کبھی عذاب اس طرح سے بھی آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ فرمایا: فلما نسوا ما ذکروا به، جب ان لوگوں نے جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جس بات پر عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس پر عمل کرنے کو بھلا دیا، چھوڑ دیا. تو جب کسی بات کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو اس پر سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر سزا کی ایک دوسری شکل بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں انہیں جس بات کی نصیحت کی گئی تھی، انہوں نے اس کو بھلا دیا، یعنی عمل نہیں کیا بلکہ مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اب ہم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر دنیا کی ہر نعمت کے دروازے کھول دیے. بیوی بھی اچھی، اولاد بھی اچھی، کاروبار بھی اچھا، فیکٹری بھی اچھی، دوست احباب بھی اچھے، دائیں بائیں سب ہاں میں ہاں ملانے والے، سب بظاہر اچھے. پھر آگے فرماتے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے نعمتیں دی، اب اس پر وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے، خوش ہو گئے کہ واہ، ہماری قابلیت، ہماری صلاحیت، ہمارے علم کی بنا پر دیکھو ہمیں کتنا کچھ مل گیا، ہم کتنا ترقی کر گئے. यहां तक कि वो इतराने लगे और अल्लाह की तरफ से जो ढील हुई उस पर उसको पाके बहुत खुश हो गए। तो अल्लाह पाक फरमाते अखज ना हम बगता, अब हमने अचानक उनको अपनी पकड़ में ले लिया। बज़ाहिर ये सब इनाम की शक्ल होती है कि आदमी सोचे मेरा कारोबार तो बहुत चल रहा है, सब मेरे चाहने वाले भी बहुत हैं, बीवी भी वफादार है, औलाद भी वफादार है। लेकिन याद रखो इन सब के बावजूद अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, अल्लाह की नाफरमानी है, हरामकारी है और उसके बाद भी आप तरक्की कर रहे हैं, फलते फूलते जा रहे हैं, सारी नेमतों के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं, तो ये इनाम नहीं है, ये बहुत बड़ा अजाब है। उसे हदीस की जबान में इस्तिदराज कहा जाता है, यानी खुदा की तरफ से ढील दी जा रही है, अजाब को और लंबा किया जा रहा है। इसलिए मेरे भाइयों गुनाह से डरना चाहिए, गुनाह से बचना चाहिए। हमेशा हमें अपने गिर्दोपेश और अपने हालात का जायजा लेना लेते रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी गुनाहों भरी जिंदगी तो नहीं। अगर हम गुनाह करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये आगे नहीं बढ़ना, पीछे हटना है, अचानक खुदा की तरफ से पकड़ आएगी। फिर आगे हमने कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा पढ़ा, अल्लाह पाक उसमें फरमा रहे वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला एक पैगंबर को हुक्म दे रहे हैं कि आप इन्हें याद दिलाइए अय्यामिल्लाह के जरिए। अय्यामिल्लाह क्या? पिछली कौमों की तारीख, पिछली कौमों के साथ जो इबरतनाक हादसात और वाकयात हुए हैं वो सुना सुना के आप इन्हें याद दिलाइए कि ये अल्लाह से डर जाएं, गुनाह छोड़ दें, अपनी हकीकत को पहचान ले। ये तो मैंने दोनों आयतें जो पढ़ी थी उसका मुख्तसर खुलासा। अब मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को नसीहत करते हुए इरशाद फरमा रहे हैं इग्तनिम खमसन कबल खम्स, पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। क्या क्या? बोलो, शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी को, जवानी की कुवत को, जवानी की जिंदगी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत जान लो। गनीमत जानने का मतलब इस बदन से खूब इबादत करवा लो, खूब वसूल कर लो। आप कितने भी ताकतवर जवान हो, कितने भी हसीन हो, खूबसूरत हो, एक दिन वो आने वाला है कि आपकी कमर झुक जाएगी, एक दिन वो आने वाला है कि आपकी गालों पर ऐसी झुर्रियां पड़ जाएंगी कि लोग देखने के लिए तैयार नहीं, एक दिन वो आने वाला। किसी की भी जवानी हमेशा बाकी नहीं रह सकती, लिहाजा जवानी की कुव्वत को गनीमत समझ के मेरे भाइयों वो काम कर लो, जन्नत में जाने के बाद सब कुछ मिलेगा, सिर्फ एक ही चीज का चांस नहीं मिलेगा। क्या? बोलो, नेकियां कमाने का। जन्नत में जाने के बाद हूर मिलेगी, बीवियां मिलेंगी, फल फ्रूट मिलेंगे, महल्लात मिलेंगे, बागात मिलेंगे, नहरें मिलेंगी। ये दुनिया में जिन आयशों के चक्कर में पड़कर हम अल्लाह को भूले रहते हैं, जन्नत में सब मिलेगा। सिर्फ एक चीज का चांस जन्नत में नहीं है, उसका मौका सिर्फ और सिर्फ दुनिया में। वो क्या चीज है? बोलो, नेकियां कमाने का मौका। एक जवान बच्ची का एक वबाई बीमारी में इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद उसके बाप ने उसे ख्वाब में देखा, पूछा बेटा क्या हाल है? कहने लगी अब्बू ना पूछो, हम पर बहुत बोझ है, आप अभी ऐसी दुनिया में हैं कि बहुत कुछ नेकियां कर सकते हैं मगर आप गफलत में हैं। हम अब ऐसी दुनिया में आ चुके कि एक मरतबा सुभान अल्लाह पढ़कर उसका सवाब नहीं कमा सकते। पता है एक मरतबा सुभान अल्लाह का क्या सवाब है? बाद रिवायात में कि एक मरतबा सुभान अल्लाह कोई पढ़ेगा तो एक लाख नेकी। कितनी नेकी? बोलो, सब लोग एक मरतबा पढ़ लो सुभान अल्लाह, एक लाख नेकी लिखी गई। और आपने पढ़ लिया सुभान अल्लाह ही वह भी हम भी, तो एक लाख चौबीस हजार नेकी। अभी आप सोचो अपनी जबान से, अपनी जबान से कितनी मरतबा आप सुभान अल्लाह कह सकते, मगर गफलत। मक्का मुकर्रमा में खातून थी, वो रोजाना 12,000 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ती थी। ये सुभान अल्लाह को जानते हो क्या? हदीस में عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الكلام الى الله اربع. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک سب کلاموں میں سب سے محبوب اور پیارے یہ چار کلمے ہیں. کیا چار کلمے؟ بولو سب لوگ بولو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ حدیث میں حضور فرما رہے ہیں اللہ کے نزدیک سارے کلموں میں سب سے محبوب یہ چار کلمے. اللہ کے رسول ایک درخت کے پاس تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی عصا مبارک تھی، آپ نے اس عصا سے درخت کے پتوں کو جھلجھلایا اور جھڑنے لگے. پھر حضور نے فرمایا دیکھو یہ جیسے پتے جھڑ رہے ہیں نا، ایسے جب کوئی پڑھتا ہے کیا پڑھتا ہے؟ بولو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہا جب کوئی ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ درختوں سے پتے جھڑ. آج ان کلمات کی عظمت کا پتہ نہیں، کیا ہے یہ کلمات؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا خذو جنتکم، اپنی اپنی ڈھالیں پکڑ لو، سنبھال لو. ڈھال کیا چیز ہوتی ہے؟ میدان جنگ میں کام آنے والا ایک آلہ، ایک ہتھیار ہے جس سے مجاہد اپنی حفاظت کرتا ہے. حضور نے فرمایا سب اپنی اپنی ڈھالیں سنبھال لو. صحابہ نے پوچھا امین عدوین قد حضر یا رسول اللہ، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ اس سے بچاؤ کے لیے ہم ڈھالیں لے لیں. حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے بچنے والی ڈھال لے لو. پھر حضور نے بتایا کہ جو کوئی آدمی دنیا میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہے گا تو کل قیامت کے دن جب اٹھے گا تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے دنیا میں آدمی ڈھال کے ذریعے اپنی حفاظت کرتا. خالی میں اس سبحان اللہ والحمد للہ کے فضائل پر حدیثیں سناؤں تو میرے بھائی بہت حدیث ہے. سوچو آج اپنی زبان سے ان کلمات کو ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم غافل ہیں پڑھتے ہیں. کوئی عورت کی چکر میں پڑا ہے، کوئی دولت کے چکر میں پڑا ہے، کسی کو مکان بنانے کا شوق ہے، کسی کو اچھا اچھا کھانے پینے کا شوق ہے، بس یہ ساری لذتوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. ہم ان جن چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں میرے بھائیوں، جنت میں یہ سب کچھ کئی گنا زیادہ ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا ملے گا. جنت میں صرف ایک چیز کا چانس نہیں ملے گا، وہ کیا ہے بولو؟ نیکیاں کمانے. اس لیے اللہ والے بہت ہوشیار ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ایک ایک سانس کو غنیمت سمجھتے. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی کے پیر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا. پھر کیا کرتے تھے؟ بولے بس عبادت عبادت عبادت. کرتے کرتے بہت بھوک لگی تو ساتھ میں ستو رکھتے تھے، اسے یوں پانی میں گھولا، یوں پی لیا، پھر عبادت پہ لگ گئی. پوچھا کہ حضرت کیا قصہ، آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کہا بھائی میں نے حساب لگایا، باقاعدہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھو اور روٹی کے ٹکڑے بناؤ اور لقمے بناؤ، پھر اسے چباؤ، پھر نگلو. میں نے حساب کیا تو اتنی دیر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا میرا لاس ہو رہا تھا، نقصان ہو رہا تھا. اچھا حضرت کتنے دنوں سے آپ کا یہ معمول ہے؟ کہا 40 سال سے یہ معمول ہے کہ بس ستو رکھتا ہوں ساتھ میں، جہاں بھوک لگی یوں گھولا یوں پیا، پھر عبادت میں لگ گیا. اللہ والوں نے اپنی ایک ایک سانس کو ایسا وصول کیا میرے بھائی. آج ہمارے باقاعدہ ٹائم پاس کرنے کی مجلس لگائی جاتی، ٹائم نہیں پاس ہو رہا. ٹائم پاس کرنے کے لیے دنیا میں آئے. آج کا جو سورج نکل چکا ہے، کوئی بادشاہت اور سلطنت دے کے آج کے اس سورج کو پھر واپس لانا چاہے واپس نہیں لا سکتا. جو دن چلا گیا وہ چلا گیا. آپ مانے یا نہ مانے، روزانہ ہماری زندگی کا ایک ایک دن گھٹ رہا ہے، عمر کم ہوتی جا رہی ہے اور روزانہ ہم اپنی قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس جوان بچی نے اپنے باپ کو یاد دلایا کہ آپ اس وقت غفلت میں ہیں، آپ ایسی دنیا میں ہیں کہ بہت کچھ نیکیاں کما سکتے ہیں مگر آپ غفلت. پھر اس نے کہا ابو ہم ایسی دنیا میں آ چکے ہیں کہ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے اس کا ثواب نہیں کما سکتے. फिर उसने कहा इस वक्त आप खाली दो मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ के हमें उसका सवाब पहुंचा दें या दो रकात नफिल पढ़ के हमें उसका सवाब पहुंचा दें, तो अब्बू इस वक्त हमारे नजदीक आपकी दो मर्तबा सुभान अल्लाह का भेजा हुआ सवाब और दो रकात नफिल का भेजा हुआ सवाब हमारे नजदीक आपकी पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती। दुनिया से ज्यादा कीमती क्यों है? ये दुनिया कितनी बड़ी भी तुम्हें बादशाहत में मिल जाए, बहरहाल एक न एक दिन खत्म हो जाएगी और ये नेकियों का फायदा आखिरत में बाकी रहेगा। कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, तुम्हारे पास जो कुछ है सब खत्म होने वाला है, अल्लाह के पास जो है वो बाकी रहने वाला है। इसलिए मेरे भाई हुजूर नसीहत फरमा रहे हैं कि पांच चीजों से पहले गनीमत जान लो। गनीमत जानने का मतलब क्या? उसका तकाजे पर अमल कर लो, एक एक सांस को वसूल करो, उसका सही इस्तेमाल करो, गुनाहों से अपने को बचाओ। फरमा रहे शबाब का कबल हरमिक, बुढ़ापा आने से पहले अपनी जवानी को गनीमत समझो। फिर आगे फरमाया कि वह सेहत का कबल सकमिक, का अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत। बाद लोगों को देखा गया आखिर वक्त में जबान में कैंसर हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते, जबान से बोल नहीं सकते। किसी को आखिर वक्त में जबान में फालिक लग गया, लकवा लग गया, अब नहीं खाली करते, कुछ जबान ज्यादा नहीं कर सकते। हुजूर फरमा रहे सेहत को गनीमत समझ लो बीमारी आने से पहले। फिर तीसरी नसीहत हुजूर ने फरमाया अपनी मालदारी को गनीमत समझ लो फकर और मोहताजगी से पहले। मेरे भाइयों ये दौलत ये सब एक ढलती फिरती छांव है, आज इनके पास है कल उनके पास है। अगर तुम्हारे पास दौलत आ गई तो अपनी खानदानी जागीर मत समझो कि हमेशा हमें आपके पास रहेगी, सब रिमोट कंट्रोल अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखा है, जब जिसको चाहे दौलत दे दे, जब जिसको चाहे भिखारी बना दे। अभी एक साहब ने बताया कुछ दिनों पहले एक साहब की बहुत बड़ी चादरों की फैक्ट्री थी, करोड़ों का माल था, सब जल गई, पूरी फैक्ट्री जल गई। पता चला एक आदमी कल को जो करोड़पति था आज फुटपाथ पे भिखारी फिरता नजर आ रहा। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल कर लो, अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर लो, अपने हाथ से सही जीरो में ऐसी जगह। हदीस पाक में आता कि कयामत के दिन हर शख्स अपने सदके के साए में होगा, जिसने दुनिया में जितना ज्यादा सदका किया होगा इतना बड़ा साया उस पर साया फगन होगा। हम सोचते हैं अच्छा बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, फिर बाद में कर, नहीं, कोई ठिकाना नहीं। आज का ये इख्तियार आपको मिला है, अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करके अपना बैलेंस कर लो, जखीरा बना लो आखिरत के। हुजूर फरमा रहे कि अपनी इस मालदारी को गनीमत समझो फक्र से पहले। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी थी, अल्लाह पाक फरमा रहे वज़क्किर हुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के अय्याम से यानी कौमों के उरूज ज़वाल की तारीख से लोगों को बाखबर करो, बताओ कि कैसे कैसे हालात से दो चार हुए। आपको एक इस वक्त तारीख का एक बहुत ही इबरतनाक वाक़या सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो से सुने। हारून रशीद बादशाह बहुत मशहूर बादशाह गुजरा, उसका एक वजीर था, उस वजीर का नाम था जाफर इब्ने यहया बरमकी, उसकी वालदा थी उसका नाम था आनिया। आप सोचो हारून रशीद कितना बड़ा बादशाह था, एक मर्तबा बादल उसके सामने आया तो उसने बादल को मुखातब करके कहा तू जहां चाहे बरसे, जहां तू बरसेगा जितनी खेतियां और जितने गल्ले पैदा होंगे सबका टैक्स मेरे खजाने में आने वाला। सोलो कितना बड़ा बादशाह था। फिर उस बादशाह का जो वजीर होगा उस वजीर के पास कितनी दौलत, कैसा दबदबा, कैसे मकानात और कैसे बंगले, कैसे ऐश इशरत के नक्शे होंगे। मगर भाई बाज मर्तबा जब अल्लाह ताला दौलत देते हैं तो आदमी अपने दौलत देने वाले मालिक को भूल जाता है, अब उसकी नमाजें छूटने लगती हैं, अब वो हरामकारी में पड़ जाता है, अब वो फजूल खर्ची करता है, वो इसराफ करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग खाली चाय पीने का शौक पूरा करने के लिए 25-25 किलोमीटर कार से जाते हैं शौक पूरा करने के लिए, कहां जा रहे हैं? खाली चाय पीने जा रहे हैं। बाद लोग यहां से खाली अंबूर जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। याद रखो, इसराफ और फजूल खर्ची ये भी हराम है। अल्लाह ने माल दिया है, कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। माल को सही जगह से लेना और फिर सही जगह खर्च करना, इसका पूरा एक फन है, पूरा इल्म है कि माल हलाल कैसे होगा, कैसे हासिल करें। फिर हासिल हो गई, अल्लाह की अमानत है, इसको कहां खर्च करें कि इससे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह खुश होगा। सोचो जो वजीर था इतने बड़े बादशाह का, उसकी वालदा के ऐश इशरत का क्या हाल होगा। सुनो तारीख का एक अजीब व गरीब वाकया आपको सुनाने जा रहा हूं। कूफा के बहुत बड़े काजी हैं, मोहम्मद बिन गस्सान उनका नाम है। कहते ईद उल अजहा की ईद थी और मैं अपनी वालदा की मुलाकात के लिए वालदा के घर गया तो क्या देखता हूं कि वालदा के पास एक बुढ़िया है, एक बूढ़ी औरत बैठी है जिसके बदन पर निहायत बोसीदा खस्ता हाल फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन बातें बड़े अजीब और गरीब अंदाज में ऐसी कर रही है जैसे कोई बहुत पढ़ी लिखी औरत हो। बातें खूब कर रही थी और बड़े अजीब अंदाज में, ऐसा लग रहा था बड़े पढ़ी लिखी घराने की औरत हो, लेकिन जाहिरी हाल था फटे पुराने कपड़े खस्ता हाल वालदा के पास बैठी थी। मैंने वालदा को सलाम किया और सलाम करके पूछा ये कौन है। वालदा ने कहा तुम इन्हें नहीं पहचानते। कहानी कहा ये हारून रशीद जो बादशाह था, उस बादशाह का जो वजीर था, ये उसकी वालदा आनिया है।
अच्छा,
तो काजी साहब कहते मैं उसके औरत के करीब गया और करीब जाके मैंने उसे सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया। मैंने इससे पूछा कि अम्मा ये हालत जमाने ने आपको यहां तक कैसे पहुंचा दिया, आपका दौर तो बड़ा शान शौकत का, बड़ा दबदबे का और बड़ा ऐश इशरत का था, यहां आपकी जो सूरत हाल मैं देख रहा हूं यहां तक ये जमाने ने कैसे पहुंचाया। उसने बड़े दर्द भरी आवाज में कहा बेटा हम लुटाते रहे जाए करते रहे, लुटाते रहे जाए करते रहे, आखिर पकड़ आ गई। फिर वो काजी साहब कहते हैं कि हमने उसे कहा अच्छा अपने शान और शौकत के जमाने का कोई वाकया तो सुनाओ, कुछ हालत तो सुनाओ। उसने कहा बेटा खाली एक वाकया सुनाता हूं, उसी पर बकिया को कयास कर लेना कि हमारी शान और शौकत और ऐश और इशरत का जमाना कैसा था और आज हमारी क्या हालत है। कहा आज से ठीक 3 साल पहले, आज से ठीक 3 साल पहले जो कुर्बानी की ईद यानी ईद उल अजहा आई थी, उस वक्त मुझे सर पे ओढ़ने की जो मेरी ओढ़नियां थी, जो दुपट्टे थे, वो मेरे पास 400 की मिकदार में थे। कितने थे बोलो? खाली मेरे दुपट्टे 400 थे। मेरे लड़के ने कुर्बानी करके मेरे पास 400 बकरों के सर और 300 बैलों के सर मेरे पास मेरे बच्चे ने कुर्बानी करके भेजा था। अब इसी से अंदाजा कर लो जब 400 दुपट्टे थे और मेरे लड़के ने मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां भेजी तो और मेरे घर के ऐश और इशरत का क्या हाल रहा होगा, इसी पर कयास कर। और कहा बेटा आज ये हालत हो गई है। मेरे भाइयों इबरत के कानों से सुनो, दौलत के नशे में आकर गुरूर मत करो, घमंड मत करो, किसी गरीब को हकीर मत समझो, अल्लाह को न भूलो, नमाजों को न भूलो, कब्रों को न भूलो, अपने असली घर को न भूलो। अल्लाह ताला कैसे हालात पलटते। उसने कहा बेटा आज ये हालत हो गई है कि मैं तुम्हारी मां के घर 2 बकरे की खाल मांगने के लिए आई हूं कि एक खाल को दबावत देके सुखा के मैं उसे उसका कुर्ता बनाऊंगी और एक को चादर बनाऊंगी। आज ऐसी हालत हो गई, इसलिए अगर आपने फजूल खर्चियों में दौलत को उड़ाया, अय्याशियों में उड़ाया, अल्लाह की नाफरमानियों में उड़ाया तो बहुत डरने की बात है, कल को खुदा की पकड़ आ सकती है और ऐसे हालात पलट सकते। ये तो औरत का वाकया था, मर्द का सुनो। एक बादशाह था, उमवी खानदान है, अब्बासिया के जमाने के बहुत सारे खुलफा और बादशाह गुजरे, उसमें एक बादशाह था, उसका नाम था अल वासिक। मौलाना मनाजिर असल गीनानी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख में उसकी मौत और मौत से करीब का बड़ा इबरतनाक वाकया नकल किया। यह ऐसा दबदबे वाला बादशाह था। उस बादशाह का जो खादिम था, उस खादिम का नाम था अल वासिकी। वो अल वासिकी पूरी कहानी खुद सुना रहा है, कह रहा है कि मेरा बादशाह बीमार पड़ गया, और मरजुल मौत में मुब्तला हो गया, बिस्तर मर पे पड़ गया और कह रहा है कि उसकी तीमारदारी और खबरगीरी की जिम्मेदारी भी मेरे सर थी। उस पर गशी तारी हुई, बेहोशी तारी हुई, बहुत देर तक बेहोश रहा। तो हम लोग आपस में इशारा करने लगे कि शायद ये मर गया, इसकी रूह निकल गई, मगर हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि करीब जाके उसके बदन को टच करके छुए और देखे। कहा हम सब लोग आपस में इशारा कर रहे कि जाओ जाओ करीब जाओ, करीब जाके जरा चेक तो करो मर गया कि बचा। फिर कह रहा कि हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही, सब ने मुझे इशारा किया, मैं चूंकि खादिम खास था मैंने दिल को मजबूत करके आगे बढ़ा और आगे बढ़ के खाली ये मालूम करने के लिए, खाली ये मालूम करने के लिए कि वो भी जिंदा है कि नहीं, उसकी नाक पर मैंने अपनी उंगली रखी। कहा जैसी नाक पर मैंने उंगली रखी अचानक उसने आंखें खोल दी। कहा बस वो आंखें जो उसने खोला, उस आंखें खोलने का रोब वो दबदबा मुझ पर इतना पड़ा कि मैं चकरा के गिर गया, तलवार टूट गई, तलवार मेरे अंदर घुस गई। खाली डर से कि बादशाह ने पूछ लिया कि क्यों ऐसा किया था, मैं क्या जवाब दूंगा, खाली ये डर से। खैर वो तो करना यह हुआ कि उसने जो आंखें खोली थी वो अपनी जिंदगी की आखिरी आंख खोली थी, उसके बाद जो आंख बंद हुई तो बंद हो गई। उसका खादिम अलवासिकी कहता है कि फिर वो मर गया। कहा जब लोगों को यकीन हो गया कि वाकई मर गया है तो हमने उसके ऊपर एक चादर डाल दी। क्या किया बोलो? उसके चेहरे पर पूरे बदन पर एक चादर डाल दी, ढांप दी। कभी चादर डालने के थोड़ी देर बाद ही उसकी आंख के जो चादर के नीचे आंख का हिस्सा था वहां मुझे महसूस हुआ कोई चीज चल फिर रही है। कह रहे हम घबरा गए, डर गए, अभी तो हमने चादर डाली और यहां की यहां इसकी आंख के नीचे कोई चीज चल फिर रही, कैसे क्या। कब ने चादर उठाकर देखा तो एक चूहा था, वो उसकी आंख को निकालकर लेकर भागना चाह रहा था और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, कुछ ही देर पहले यही आंख थी जिसके खोलने का मुझ पर इतना रोब पड़ा कि मैं मारे डर के गिर पड़ा, तलवार टूट गई और मैं खौफजदा हो गया, और कुछ ही देर के बाद यह आंख ऐसी हो गई कि अब एक चूहा आ रहा है और उसकी आंख को लेकर निकाल के जा रहा है। मेरे भाई अल्लाह जिंदगी दे के आजमाते हैं, सेहत दे के आजमाते हैं, बंदा क्या कर रहा है। लिहाजा उस जमाने में अल्लाह को राजी करने वाला अमल करो, अल्लाह को नाराज करने वाले अमल से बचाओ, खास तौर से जुल्म न करो। तारीख का एक बहुत बड़ा जालिम हज्जाज बिन यूसुफ नाम का गुजरा है, लिखा है उसने 120,000 लोगों को कत्ल किया था और बड़े बड़े सहाबा को भी कत्ल करवाया। वो कहता था मेरे नजदीक सबसे लज्जत और मजे वाली चीज है किसी का खून बहाना। हालांकि हदीस पाक में आता है अगर किसी कोई किसी मुसलमान को किसी धारदार आले से खाली इशारा कर रहा है तो उस शख्स पर अल्लाह की लानत नाज़िल होती है। फिर जो कत्ल करे किसी को नाहक कत्ल करे तो वो अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा पापी और मुजरिम होगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने सबसे आखिर में जिस जलीलुल कद्र आलिम दीन को शहीद किया वो बहुत बड़े ताबेई थे, उनका नाम था हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह। बस जैसे ही उनको कत्ल करके फारिग हुआ इसको जुनून और पागलपन की बीमारी लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसके पेट में कैंसर का फोड़ा हो गया, फिर वो बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा। उसकी वजह से एक ऐसी खतरनाक और नई बीमारी हुई जिसे जमहरीरा कहते हैं कि उसे ऐसी सर्दी लगती थी, इतनी सर्दी लगती थी कि अंगेठी जला के उसके बदन से करीब करते, कहता और करीब करो और करीब करो, यहां तक कि अंगेठी की आग से उसकी खाल जलने लगती तो भी उसकी ठंडक नहीं जाती, परेशान और करीब करो। आखिरकार उस जमाने के सब बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों ने चेक करके कहा अब इसकी बीमारी ला इलाज है, हमारे पास कोई इलाज नहीं। फिर आखिर में बहुत परेशान होकर उस जमाने के सबसे बड़े जो वलीअल्लाह मशहूर थे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उसने बुलाया, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए। गिलगिला के रो के कहने लगा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा देख हज्जाज में तुझे मना करता था, समझाता था जुल्म मत करना और देख अल्लाह वालों को मत सताना, ये तूने सईद बिन जुबैर के साथ जो जुल्म किया है ये उसी का खमियाजा तू भुगत रहा है। उसने कहा हजरत अब मेरे लिए सेहत की दुआ नहीं, अब मौत की दुआ कर दीजिए कि मुझे मौत आ जाए ताकि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, अब बर्दाश्त नहीं होता। आखिरकार कुछ दिनों के बाद वो सारी बीमारियां झेलते हुए मर गया। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो कह रहा है कि मैं सईद बिन जुबैर को मैंने जो कत्ल किया उसके बदले में रोजाना मुझे कत्ल किया जा रहा है, फिर जिंदा किया जाता है, फिर कत्ल किया जाता है, फिर मुझे जिंदा किया जाता है, फिर मुझे कत्ल किया जाता है, मुसलसल मेरे साथ है मामला। मेरे भाइयों, ऐसे बादशाहों की और उमरा की और खुदा को भूलने वालों कर भूलने खुदा को भूल कर जिंदगी गुजारने वालों की बड़ी अजीब अजीब दास्तान है। एक बादशाह था, नाम नहीं लूंगा, उस बादशाह को औरत की लज्जत और औरत की शहवत पूरी करने का बड़ा शौक था। उसने अपने वजीरों से कहा, मुझे आज कोई टेंशन की खबर मत देना। वजीरों का कैसे हो सकता है, आपकी सरहद पर हरीफ की तरफ से मुकाबिल की तरफ से हमले का खतरा। का उसका इलाज यह है कि 24 घंटा मुझे मुल्क के बारे में कोई खबर न दी जाए, आज पूरा 24 घंटा मैं मस्ती से और अय्याशी के साथ और मस्ती और जो मेरा जी चाहेगा ऐसा मैं गुजारना चाहता हूं। अच्छी बात है, बादशाह का ऑर्डर था। सब महल सजा दिए गए और महल के अंदर एक बहुत उसकी खूबसूरत बांदी थी, उसका नाम था हुबाबा, उसको बहुत चाहता था। बीवियां तो उन लोगों की बहुत होती थी, बांदियां भी बहुत होती थी। फिर उन बांदियों में एक बांदी ऐसी थी जो बहुत हसीन खूबसूरत थी, उसका नाम था हुबाबा। ये आर्डर दिया गया कि उसको सजा के बेडरूम में भेज दिया जाए और बेडरूम में जूस फ्रूट खाने पीने के सब चीजें और ऐश इशरत के सब नक्शे और उसका इंतजाम कर दिया जाए। देखो, जब कोई आदमी खुदा को भूल जाता है तो कैसी पकड़ आती है, जिस लाइन से भूलता है उसी लाइन से पकड़ा जाता है। अल्लाह अपने पकड़ से अपने अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए मेरे भाई। बस वो क्या था, अपनी बांदी हुबाबा को अपनी रान पे लेटाए हुए मस्ती कर रहा था। अंगूर बड़े बड़े रखे थे, एक अंगूर खुद अपने मुंह में डालता और एक अंगूर उसके मुंह में डालता, यूं मस्ती चल रही थी। बस इसी हालत में एक अंगूर उसने जैसी अपनी हुबाबा के मुंह में डाला तो वो अंगूर गिजा वाली नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चला गया। कहां चला गया बोलो, गिजा वाली नाली में जाने के बजाय सांस की नाली में चला गया। और आप बताइए, जब सांस की नाली में चला जाए तो कोई बच सकता है? उसी वक्त उसी की गोद में उसकी महबूबा ने दम तोड़ दिया, इंतकाल हो गया। अब चूंकि उसको दिल में बैठा था, बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, अब वजीरों ने देखा कि मर गई है तो उसकी गोद से उसको निकाल के उसको गुस्ल और कफन देना चाहते थे, मगर वो कहता था नहीं, मर गई है फिर भी मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास ही रहने दो, मैं इसको देखता रहूं। आखिरकार जब कई दिन गुजर गए, वही वजीरों ने देखा कि लाज फूल फट जाएगी और बदबू, तो जबरदस्ती उसकी लाज को उसकी गोद से घसीटा निकाला और उसकी तजहीर और तकफीन की। मगर चूंकि ये उसकी चक्कर में दीवाना जैसा हो चुका था, 15 दिन उसके चक्कर में पागल रहा और 15 दिन के बाद ये खुद भी ऐसी मर गया। मेरे भाइयों, बहुत लंबी कहानी है, बहुत वाकयात हैं, मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश किया। और खुद अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अय्यामिल्लाह के जरिए लोगों को याद दिलाओ, उनका भूला हुआ सबक याद दिलाओ। कैसी बड़ी बड़ी कौमें आई, एक से एक ताकत वाले दौलत वाले आए, मगर जिन्होंने अल्लाह को भूल कर जिंदगी गुजारी मेरे भाइयों, उनकी मौत भी बड़ी इबरतनाक हुई, बड़ी दर्दनाक हुई और उनकी जिंदगी भी। एक बादशाह था काहिर नाम का, उसको भी लोगों का खून बहाने में बड़ा मजा आता था। कुल 6 साल 6 महीना और 1 हफ्ता उसकी बादशाहत बाकी रही। आखिर में जो उसके मानने वाले थे, वो मानने वाले उसके मुखालिफ हो गए और वो मानने वाले जो थे उन्होंने ही पकड़कर उसकी आंखें निकाल ली। वो भिखारी हो गया। बगदाद की जामा मस्जिद में एक साहब ने देखा कि एक आदमी है, उसका चेहरा मस्क हो चुका है और वो सदा लगा रहा है कि भाइयों, कल को मैं तुम्हारा बादशाह था और आज मैं ऐसा फकीर हो गया हूं कि अपने सदकात के जरिए तुम मेरी मदद करो। हालांकि 6 साल 6 महीना और 1 हफ्ते तक खुद उसकी बादशाह थी, मगर अय्याश था, जुल्म करने वाला था, अल्लाह को भुलाने वाला था। तो मेरे भाइयों, दुनिया को अल्लाह ने ऐसी इबरत की आंखों से दिखाया। बस मैं अपने मजमून को समेट रहा हूं और आखिर में हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजरूब रहमतुल्लाह अलैह की नशार के साथ मैं आपसे रुख्सत होना चाहता हूँ। हजरत ने बड़े दर्दनाक अशार पढ़े हैं। हजरत फरमाते हैं, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने, कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे महल वो अब है सूने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते भी हारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यू ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हमारा ये मजमून मुकम्मल हो गया। अब आखिर में आपको एक बहुत बड़ी बशारत सुनाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा खजाना देने जा रहा हूँ, और उस पर अमल करने में कुल 1.5 मिनट का वक्त लगेगा। आप सब नियत करें कि हम सब उस पर अमल करेंगे ताकि वो खजाना हम सबको मिल जाए। मैं पहले हदीस पढ़ता हूं, मतन तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है। عن عمارة بن شبيب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل وهو على كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب بعث الله له مصلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح وكتب الله له 10 حسنات موجبات ومحى عنه 10 سيئات موبقات وكانت له بعدل رقاب مؤمنات رواه الترمذي او كما قال۔ یہ حدیث پوری ہو گئی، اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی آدمی مغرب کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لے، سب نیت کرو کہ پڑھیں گے 10 مرتبہ۔ میں نے تجربہ کیا ہے کہ 10 مرتبہ پڑھنے میں 1.5 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ کتنا لگتا ہے بولو؟ وہ کلمات کیا ہیں، میں ایک مرتبہ پڑھاتا ہوں، سب لوگ پڑھو میرے ساتھ۔ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، بس اتنا پڑھنا ہے۔ حضور فرمانے، جو بھی مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا تو پہلا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایسے فرشتوں کی اسپیشل فوج بھیجیں گے جو ہتھیاروں سے مسلح و لیس ہوں گے، اور اس پڑھنے والے کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں۔ سب لوگ ارادہ کرو کہ ہم خود بھی پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ رات میں گناہ بہت ہوتے ہیں، رات میں بہت سے لوگ شیطانی حملوں میں پھنس جاتے ہیں اور گناہوں کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مغرب بعد پڑھ لیا، اب فرشتے اسپیشل طریقے سے شیطان سے آپ کی حفاظت کریں، پہلا انعام۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اس پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 10 ایسی نیکیاں لکھوا دیں گے جو جنت کو واجب کرنے والی، ہر نیکی واجب کرنے والی، ایسی 10 نیکیاں لکھوائیں گے، دوسرا انعام۔ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ 10 اس کے ایسے گناہ مٹوا دیں گے جو گناہ اس کو ہلاک کرنے والے تھے، 3 انعام۔ چوتھا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 ایسے مومن غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے جو غلام مومن تھے۔ گویا اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنے پر 4 بڑی بڑی بشارتیں ہیں، اور پکی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی روایت۔ بولو، سب لوگ ارادہ کرتے پڑھو گے؟ مغرب بعد پڑھو گے کہ فجر بعد پڑھو گے؟ ارے فجر بعد بھی پڑھو، ہاں صبح شام دو، صبح بھی پڑھنے پر تقریباً کچھ کم زیادہ یہی بشارت ہے۔ میں نے اس وقت جو حدیث پڑھی اس میں تو مغرب کا تذکرہ ہے، لیکن ایک دوسری حدیث میں صبح کا بھی تذکرہ ہے، اس میں اسی کے قریب قریب انعامات ہیں۔ سب علیحدہ کر لو کہ روزانہ صبح بھی 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں گے اور شام کو بھی پڑھیں گے، پڑھو گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا